أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ مال غنیمت اللہ کی ملک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو. اور صلح کس طرح ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو اگر تم سچے مؤمن ہو. یقیناً مؤمن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل سہم جائیں، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہی سچے پکے مؤمن ہیں. ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے، معافی ہے، اور عزت کی روزی ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. شروع کی جو آیت ہے، پہلی آیت، اس سلسلے میں تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکی ہیں. اصل میں اس سورت سے پہلے جو سورت ختم ہو رہی تھی اس میں خاص طور سے حکم تھا قرآن شریف کے متعلق کہ قرآن شریف جب تلاوت کی جائے تو ایسی سورت میں پوری توجہ کے ساتھ سنو اور اس کی طرف کان لگاؤ، یعنی دھیان بھی دو. یعنی اگر آواز آتی ہے تو خاموش بھی ہو جاؤ اور دھیان کے ساتھ سنو بھی، تو لعلکم ترحمون، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے. پھر اس کے بعد تذکرہ تھا خاص طور سے ذکر کا کہ مؤمن کو چاہیے کہ اللہ کی یاد کے اندر ہمیشہ لگا رہے، اور کلام پاک کی تلاوت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، بلکہ بہترین ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے کلام پاک کی تلاوت سے بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے. اور اب جو قریب مہینہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، وہ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہی کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی لیے رکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آسمانی کتابیں تو بہت سارے ہیں، بڑی بڑی کتابیں سب کو معلوم بھی ہے، لیکن اس کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا. بلکہ حضرت عزیر کے متعلق آتا ہے جو جن کے اوپر جو توریت کے حافظ تھے، تو لوگوں نے صرف اس بات کی وجہ سے یہ وہ توریت کے پورے حافظ تھے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے ان کو یاد ہو گئی ہوں. تو معلوم ہوا کہ کلام اللہ کا یاد ہو جانا جو ہے یہ بڑی بات ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ حفاظ کلام پاک کو یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین کر دیا کہ رمضان شریف میں تراویح پڑھو اور پڑھاؤ. تو جو حفاظ کلام پاک کی تراویح پڑھاتے ہیں ان کے تو سینے میں محفوظ رہتا ہے، لیکن جو نہیں پڑھاتے ہیں وہ چند سالوں کے بعد یا تو بھول جاتے ہیں یا ایک دم بھول نہیں جاتے تو کچا ہو جاتا ہے. تو اس لیے خاص کر کے یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ اسی کا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ جو ہے ان کا تو خاص معمول تھا کہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے یا کسی سے پڑھوا کر سنا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، بالکل کسی سے بات چیت بھی نہیں، بلکہ ان کی خانقاہ کے اندر جو ہے بہت سارے علماء، آخر عمر کے اندر تو بہت سارے علماء جاتے تھے، 500-500 علماء ہوتے تھے، عوام کی بات تو الگ ہے، کبھی تو 800-900 معتکفین ہو جاتے تھے، تو ان سب کو ایک ہی بات تھی، یا تو خاموش رہو یا کلام پاک کی تلاوت کرو، کسی کو بات کرتے دیکھتے تھے تو ان کو خدام جا کر تنبیہ کرتے تھے کہ میں بات مت کرو، رمضان شریف میں بات نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے مولانا منظور صاحب، مولانا خلیل سجاد کے والد صاحب جو ہے، وہ ایک مرتبہ تشریف لائے کسی بات پر تو سلام، صرف سلام کر لیا، اس کے بعد بعد میں پوچھا کہ بھائی ویسے ہم اس سے پہلے جب بھی آتے تھے تو آپ بڑی تواضع بہت گیا ہمارا اکرام کرتے تھے، رمضان شریف میں صرف سلام کا جواب ہی دے دیا، لیکن رمضان شریف میں بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو رمضان شریف کی خوب قدر کرتے ہیں، کلام پاک کی خوب تلاوت کرتے ہیں، تو آدمی ابھی سے اپنا ذہن بنائے کہ بھائی جیسے عام طور پر جو ہے اچھے کام کے لیے لوگ معلوم نہیں کیا کیا پروگرام بناتے ہیں، ڈائری کے اندر تاریخ کے ساتھ سب کچھ لکھ لیتے ہیں کہ فلاں کام کا دن جو ہے فلاں دن میں یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے، تو رمضان شریف کے لیے جو ہے ابھی سے آدمی اپنا ذہن بنائے کہ مجھے روزانہ اتنا وقت قرآن شریف پڑھنا ہے، چاہے دو گھنٹے ہو کہ ایک گھنٹہ ہو، یا ایک ختم کرنا ہے کہ دو ختم کرنا ہے، اس کی تفصیل تو بعد میں آپ نے بہت ہی مرتبہ سنی، اللہ والے ایسے ہیں کہ ایک ایک دن میں ایک ایک ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے خود ہی لکھا ہے کتاب اپنے فضائل رمضان میں کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، یہ تواضع کے طور پر فرمایا، لیکن کہتے ہیں میرے گھر کی جو ہماری بیٹیاں اور عورتیں ہیں وہ روزانہ 10-10 پارے پڑھ لیتی ہیں، تو کیسے پڑھتی ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ یاد ہو جبھی نے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ اس کا عذر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یاد نہیں ہے ہم کیسے پڑھیں، نہیں، آدمی جب پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد زبان اس کی چلتی ہو جائے گی، بلکہ بہت سے غیر حافظ جو ہیں ان کو قرآن شریف اتنا یاد ہوتا ہے کہ حافظ کی طرح وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہاں مشابہت ذرا لگ جاتی ہے، اندر تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، اور جو حافظ ہیں بالکل نہیں پڑھتے وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ سارا بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی بہترین صورت کلام پاک کی تلاوت بھی ہے، وہاں اس بات کا بھی تذکرہ تھا خاص طور سے کہ اللہ کے پاس جو ہیں یعنی فرشتے جو ہیں وہ خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں، تو بہت سے ملائکہ ایسے ہیں کہ جو سجدے میں ہیں سجدے ہی کی حالت میں قیامت تک رہیں گے، بہت سے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں وہ رکوع ہی میں رہیں گے، بہت سے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں وہ ہوتے ہوئے تسبیح ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کی تسبیح بھی الگ الگ قسم کی ہے، بہت ساری حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں یہ فلاں قسم کے فرشتے جو ہے وہ اس طرح کی تسبیح پڑھتے ہیں اس طرح کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پہلا حکم دیا گیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو خدا کا تقویٰ یہی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے، تواضع سے پیش آئے، خدا کے سامنے کیا بلکہ مخلوق کے سامنے بھی آدمی کبر نہ کرے، تکبر بڑی چیز بہت بری چیز ہے، تو فرشتے کے اندر یہی خاص صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، کلام پاک میں خود موجود ہے لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، یہ جو مسیحی بن عیسیٰ جو ہے جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی خدا کی عبادت سے کبھی جو ہے اپنے آپ کو منہ نہیں چڑھاتے اور اپنا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ خدا کی عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اسی طرح الملائکۃ المقربون وہ فرشتے جو مقرب ہیں ان کا عمل بھی یہی ہے کہ ہمیشہ تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں اللہ کی تسبیح میں سجدے میں رہتے ہیں، تو پہلی یہ صفت جو ہے یہ تو انسان کے اندر بھی ہے، وہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اللہ کی یاد کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن آگے اس کے بعد ایک اور حکم ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح کرو، آپس میں جو ہے دل صاف رکھو، معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے محبت والا ہونا چاہیے، عداوت نفرت بالکل نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو پورا بتا دیا تھا یہ غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ مال غنیمت بہت سارا ہاتھ آیا تھا اور اس میں تین قسم کے گروہ ہو گئے تھے گویا، ایک تو وہ تھے جنہوں نے دشمنوں کا پوری طور پر مقابلہ کیا، ان کا تعاقب کیا، ان کو بھگایا تو وہ سارے مال چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کچھ صاحب آئے تھے جنہوں نے اس مال غنیمت کو جمع کر لیا، اور کچھ صاحب آئے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گرد میں رہے آپ کی حفاظت کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن موقع پا کر جو ہے آپ پر حملہ کر دے، तो वो जो सहाबा जो नौजवान जिन्होंने जो है दुश्मनों को मार भगाया था और उनके और वो माल छोड़ के भाग गए थे, वो कहते थे कि ज़्यादा हकदार हम हैं। दूसरे वाले यूँ कहते थे कि माल तो हमने जमा किया लिहाजा हम ज़्यादा हकदार है। और वो के जो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे वो कहते हैं भाई हम भी तो यहीं थे, हम तुम्हारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के लिए थे, वरना हम भी ये दोनों काम कर सकते थे, लेकिन हमने इसको ज़्यादा अहम समझा इसलिए। तो चूँकि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिए जो है ये बहुत छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर होता रहता है, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे उनकी शान बहुत ही ऊँची थी। उनकी शान तो कैसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए तो आने के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाईचारगी बना ली, एक दूसरे का भाई बना दिया। तो कैसे भाई बन गए कि उन्होंने जो है अपने माल में से तक हिस्सा दे दिया, और यहाँ तक कहा कि जिसकी दो बीवियाँ थी कि मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूँ, जब इद्दत पूरी हो जाए तो मुझसे निकाह भी कर लो। कितनी बड़ी बात है, कितनी कुर्बानी। तो वो तो ऐसे कुर्बानी करने वाले थे, उनके दिल में दुनिया की लालच माल कुछ भी नहीं था, लेकिन वक्ती तौर पर एक बात पेश आ गई तो ये भी उनके लिए जो है वह उनके लिए अच्छी बात नहीं थी, उनकी शायन शान नहीं थी। यूँ इसीलिए अल्लाह ताला ने फौरन जो है उनके मुतालिक फरमाया फत्तकुल्लाह व असलहु ज़ात बैनकुम, कि ये भी अब ये बात ऐसी है जिसकी वजह से आपस में जो है गोया एक दूसरे के दिलों के अंदर जो है कोई कदूरत पैदा हो जाएगी, ये बहुत बुरी बात है। आपस में इस्लाह कर लो और क्या करो, वातीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। रहा ये माल गनीमत, तो माल गनीमत तुम्हारा है ही नहीं, जाओ, ये माल गनीमत अल्लाह का है, अल्लाह की मिल्क में है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े के अंदर है, आप मुतसर्रिफ हैं, आप जिस तरह चाहेंगे उसके मुताबिक जो आप उसको तकसीम कर देंगे। चुनांचे बता दिया गया ये एक खुम से निकाल लिया गया और एक खुम से पाँचवा हिस्सा, और उसके बाद जो था वो मुजाहिदीन के दरमियान में जो है वो तकसीम कर दिया गया। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान बहुत ऊँची थी, तो एक छोटी सी बात जो है वो भी उनके लिए मुनासिब, उनकी शान के मुनासिब नहीं थी, इसलिए उनके लिए ये ख़ास तौर से ये हुक्म नाजिल हुआ। आगे अल्लाह ताला आम वह हम सब मोमिनीन के लिए बताते हैं, मोमिन के अंदर ये पांच सिफत अगर पाई जाए तो वो हर आदमी अपने मुतालिक कहे कि मैं सच्चा पक्का मोमिन हूँ, किसी पूछने के जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी मुफ्ती साहब से या मौलाना साहब से आपने पूछे, जैसे बहुत ही मरतबा जो है कोई तालिब इल्म होता है ना, अपने उस्ताद से पूछा है ना कि मैं कैसा हूँ आपके नज़दीक, तो जाहिर बात है कि वो अच्छा हो तो फिर वो कह देते हैं कि माशाल्लाह तू बड़ा ज़हीन है कि बड़ा ज़की है, जो भी हो। तो यहाँ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, पांच सिफात बयान की है, हर आदमी अपने मुतालिक देख ले कि मेरे अंदर ये है कि नहीं है, अगर है तो आप सच्चे पक्के मोमिन हैं, नहीं है तो अल्लाह ताला से मांगें या और कोशिश करें कि वो सिफत अपने अंदर पैदा हो जाए, और अगर कुछ है सारी हैं तो सुभान अल्लाह, सारी नहीं है जितनी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस सिफत से मुझे नवाजा है। जैसे किसी के पास माल हो तो आदमी खुश होता है कि नहीं, दुआ करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, दूसरों को देखकर जो है आदमी बड़ा खुश भी होता है, मरीज़ को देखकर जो है आदमी परेशान होता है और ख़ुद की सेहतमंद पर जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। तो क्या है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, पहली सिफत तो ये है, यकीनन मुमिन वो लोग हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनकी दिल लरस जाए, यानी अल्लाह ताला के जब अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, अल्लाह ताला का नाम लिया जाए तो ऐसी सूरत में खुदा की अज़मत की वजह से, खुदा की किबरियाई की वजह से, हैबत की वजह से जो है उनका दिल धरस जाने चाहिए। जब इसी तरह बाद उलेमा ने इसका मतलब ये भी लिखा है कि एक आदमी नाऊज़ बिल्लाह शैतान बहकाता है या नफ्स बहकाता है, कोई गुनाह की तरफ उसकी तबीयत चलती है, लेकिन फौरन उसको याद आ जाते हैं अल्लाह का ध्यान आ जाता है, अल्लाह के ध्यान की वजह से जो है वो उस गुनाह से बच जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर कोई गुनाह करना चाह रहा था लेकिन इत्तेफाक से जलजला आ गया, अब वो उस गुनाह से डर के मारे छोड़ दिया, यहाँ जो है कि गुनाह से बच गया इस ये तो बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन इसके पर उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, क्यों, इसलिए कि उसने उस गुनाह को क्यों छोड़ दिया। या इसी तरह कहीं तन्हाई के अंदर कोई गुनाह करना चाहता था लेकिन तन्हाई नहीं रही, कोई आदमी वहाँ पर पहुँच गया तो उसकी वजह से उसने वो बुराई छोड़ दी, तो जाहिर बात है इसके ऊपर उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी ने बुराई का इरादा किया लेकिन इरादा करने के बाद फौरन उसको याद आ गया, अरे इसके ऊपर तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है इतनी वईद है, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से मेरी पकड़ होगी, आखिरत में मेरे ऊपर ये अज़ाब होगा, कि इसमें से किसी बात को भी याद कर ले फिर उस गुनाह से वो बाज आ जाए, ऐसी सूरत में जो है इसके ऊपर बड़ा अजर मिलेगा इसको। क्यों? इसलिए कि इसी का नाम तकवा है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के खौफ की वजह से उसका दिल नरस गया। चुनांचे ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, वो एक वाकया तो बारह आपने सुना होगा, तीन आदमी गार में थे और गार के अंदर थे और पत्थर आके गिर गया था, अंदर फंस रहे थे, बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर हटा ही नहीं, तो फिर आपस में सोचा कि भाई अब तो एक ही शक्ल है कि अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करो और अपनी ज़िंदगी में जो इखलास के साथ जो अमल किया हो उसका वास्ता देकर जो है अल्लाह से दुआ करो, हो सकता है अल्लाह ताला खोल दे। तो हर एक ने दुआ की, वो लंबी बात है, एक ने ये भी दुआ की कि अल्लाह मेरी ये खाला इक्तदार बहन थी और वो बड़ी खूबसूरत थी, मैं उसके ऊपर आशिक था और मैं चाह रहा था कि मैं उससे अपनी हाजत पूरी करूं, लेकिन वो किसी वक्त तैयार नहीं हुई, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पैसों की वजह से बहुत मजबूर हुई, मेरे पास वो कर्ज़ लेने के लिए आई। जब वो कर्ज़ लेने के लिए आई तो ऐसी सूरत में मैंने उससे वही शर्त लगा दी कि ठीक है पैसे तुझे जितने चाहे मैं तुझे दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी कर ले। तो वो बेचारी जो है मजबूर थी, मजबूर होने की वजह से उसने हाँ तो भर दी, हाँ तो कह दिया, लेकिन जब ऐन वक्त हुआ तो उसने एक जुमला कहा, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। बस कहते ये कहना था कि मैं अल्लाह ए खुदा मैंने तेरी वजह से जो है मैं वहाँ से हट गया, और उसके बाद मैंने यूँ भी कह दिया कि ये दिरहम भी तेरे हैं, मैं कर्ज़ नहीं दिया, मैंने तुझे वैसे ही दिया, अल्लाह के लिए दे दिया, अल्लाह ए अल्लाह अगर ये अमल तेरे नज़दीक में मकबूल है तो पत्थर को हटा। तो तीनों ने दुआ मांगी थी, इसने एक दुआ ये भी मांगी थी। तो इत्तकिल्लाह वैसे भी याद रखना चाहिए, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई झगड़ा हो या कोई बात हो, सामने वाला आपको कहता है अल्लाह से डर, तभी कहता है ऐसा, तो ऐसी सूरत में आदमी को झुक जाना चाहिए, हक पर हो तो अभी झुक जाना चाहिए, ना हक हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? उसकी वजह यह है, कलाम पाक के दूसरे पारे के अंदर ख़ास तौर से है कि जो मुतकब्बिर लोग होते हैं जब उनको यूँ कहा जाता है इत्तकिल्लाह तो वो खुदा खुदा से डरते नहीं, बल्कि ऐसी सूरत में और ज़्यादा वो सामने वाले को परेशान करते हैं। वहाँ कुरान शरीफ की आयत है, फहसबहु जहन्नम, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम काफ़ी है, यानी आखिरत में ज़रूर मैं उसकी पकड़ करूँगा। तो बहरहाल तकवा बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी के अंदर तकवा पैदा होना ही चाहिए। सबसे पहली सिफत जो है वो यही है कि इन्नमल मुमिनून, मुमिनीन की सिफत ये है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो ऐसी सूरत में उनके दिल जो है अल्लाह ताला के खौफ से लरस जाए। फिर दूसरी सिफत ये है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने अल्लाह की आयतों को जिक्र किया जाए ऐसी सूरत में उनके ईमान के अंदर ताजगी पैदा होना चाहिए, ईमान बढ़ना चाहिए। असल में ईमान क्या है? ईमान की हकीकत दो चीज़ें हैं, एक ऐसा समझ लो, एक तो नफ्स ईमान है, यानी हर आदमी जो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, खुदा को मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है, वो मोमिन है। लेकिन जाहिर बात है हर मोमिन के हालात एक तो नहीं होते हैं, हर मोमिन के हालात अलग अलग है। इसकी मिसाल अगर देखना हो तो आप एक दरख्त को देख लीजिए, एक फलदार कोई भी दरख्त हो, मसलन फलदार कोई दरख्त है, अब एक दरख्त तो ऐसा है कि वो बिल्कुल तरोताज़ा है, उस पर शाखें भी लगी हुई है, पत्ते भी हरे हरे हैं, उसके जो फल भी है वो फल भी आया है, आम का दरख्त है आम के फल आए हैं, या एप्पल का दरख्त है तो उसके ऊपर सेब लगे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि ये तो हकीकत में कामिल दरख्त है, जैसा होना चाहिए वैसा है, उसको देख कर आदमी पहचान मिलेगा। और एक ये कि वो दरख्त तो है मौजूद, लेकिन गर्मी की वजह से या पतझड़ के मौसम में या जैसे कि यहाँ के मौसम में कि सर्दी जब खूब होती है तो उसके पत्ते वत्ते और फल और सब कुछ गिर गया, अब ये भी नहीं पता चलता कि ये दरख्त मरा हुआ है या ज़िंदा है, इसलिए ज़िंदा होने की उस पर कोई अलामत ही नहीं है, लेकिन बहरहाल है। हाँ, जब मौसम ठंडी का चला जाएगा फिर दोबारा उस पर जब बागो बाहर आएगी तो पता चल जाएगा उस वक्त भी ज़िंदा था, मरा नहीं था, मरा होता तो फिर दोबारा उस पर नहीं आता। तो बिल्कुल इसी तरह मोमिन के दिल में ईमान तो होता है, लेकिन ईमान जब ज़यीफ़ और कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से जो है जो आमाल उससे सादिर होने चाहिए वो आमाल उससे सादिर नहीं होते हैं, जो करने के काम है वो करता नहीं, जो न करने के काम है उससे बचता नहीं, यूँ शराब न पीना चाहिए लेकिन बहरहाल दोस्तों के साथ जाता है। इसी तरह और जितनी बुराइयाँ हैं, ताश खेलना है या और जो कुछ है, जितनी बुराइयाँ हैं बुराई करता है, तो जाहिर बात है ईमान तो उसके अंदर है, लेकिन ये नफ्स ईमान है। इसीलिए ईमान कभी बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। क्यों? हालात के एतबार से। बहुत सी मरतबा आदमी जो है कलाम पाक की तिलावत करता है, अच्छी मजलिस में बैठता है, उलमा की सोहबत में बैठता है, उसकी वजह से उसके ईमान के अंदर कैसी ताजगी पैदा हो जाती है, बड़ी ताजगी पैदा हो जाती है, और उसकी वजह से फिर आदमी बहुत से अमल भी करने लगता है। लेकिन उसी के बरक्स आदमी जब जो है गलत माहौल में चला जाता है तो गलत माहौल की वजह से जो है फिर उसका ईमान ज़ईफ़ और कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन नफ्स ईमान ज़रूर होता है। चुनांचे हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने एक मरतबा पूछा कि आप मोमिन है, ये पूछ लिया सवाल। तो उन्होंने कहा कि भाई दो बातें अलग अलग है, तुम मुझे पूछते जो है मोमिन है किस एतबार से। अगर इस एतबार से पूछते हो अल्लाह रसूल पर मेरा ईमान है कि नहीं, तो मैं मोमिन हूँ। लेकिन अगर तुम इस आयत के मुताबिक पूछते हो, ये आज जिस आयत के अंदर ये पांच सिफतें बयान की है, तो जाहिर बात है कि मुझे नहीं मालूम कि वो पाँचों के पाँचों सिफतें मेरे अंदर पूरी तौर पर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो ईमान के जब तरक्की होती है, ईमान जब मजबूत होता है, ऐसी सूरत में आदमी को नेक आमाल करने का शौक़ और जज्बा भी पैदा होता है। चुनांचे रात दिन जो है फ़ैज़ाइल आमाल के अंदर सुनते ही रहते हैं। जो अल्लाह वाले थे एक दिन में 1000 रकात पढ़ते थे, कोई 500 रकात पढ़ता था, कोई दिन भर रोज़ा रखता था, कोई पूरा कुरान शरीफ तिलावत करते थे। कितने वाक़ियात पढ़ते हैं वो, क्यों? उनके ईमान के अंदर ताजगी थी इसलिए। और हकीकत यही है, ईमान की ताजगी की वजह से जो है फिर बड़ा लुत्फ भी आता है आदमी। हमें याद है एक मरतबा हमारे एक साथी थे, वो किसी ज़माने में हम जब पढ़ते थे सहारनपुर में, तो वो जलालाबाद मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ़ी थानवी रहमतुल्लाह के वो बड़े खलीफा थे, उनके खिदमत में ऐसे ही मुलाकात के लिए गए। तो उनसे दरख्वास्त की और आखिर में कहा कि कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो हज़रत ने कहा कि शरीयत पर इस तरह अमल करो कि शरीयत तुम्हारी तबीयत बन जाए। यानी आदमी शरीयत का इतना पाबंद हो जाए कि जैसे तबीयत की जो चीज़ें होती है वो बिला इरादा अदा होती रहती है, उसी तरह वो सारी चीज़ें अदा होने लगे और ना होने पर जो है आदमी को तकलीफ़ हो। इसकी मिसाल आसान से देता हूँ। जो आदमी ड्राइवर होता है तो शुरू में तो बहुत सोचना पड़ता है कि कैसा डरता है, घबराता है, क्लच कहाँ है, ये वो। लेकिन आदमी जब ड्राइवर अच्छा हो जाता है तो बातें भी करता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, खाना भी खाता है, ड्राइविंग भी करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है ब्रेक भी लगा, सब कुछ करता है। उसको पता भी नहीं चलता कि मैं ऐसे चला रहा हूँ। क्यों? उसकी एक तबीयत बन गई है। तो उसी तरह आदमी की जब तबीयत बन जाए शरीयत पर अमल करने की, तो फिर उसके लिए शरीयत की जितने आमाल हैं आमाल उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं, वरना फिर उसके लिए परेशानी होती है। चुनांचे यहाँ एक अरबी शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, इदा हल्लतिल हलावतु कल्बन नशतत फिल इबादतिल आज़ाओ। क्या आदमी की तबीयत के अंदर, दिल के अंदर जो है जब हलावत और शीरीनी पैदा हो जाए, तो कहते फिर इबादत के अंदर वो चुस्त हो जाता है। तो हदीस पाक में भी है कि मोमिन को ईमान की हलावत नसीब होती है। तो हलावत यही है कि शरीयत की जितने आमाल हैं उसके ऊपर अमल करना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं, दूसरी सिफत है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने कलाम पाक की आयतों की तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। और खुद सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में तो ये हकीकत भी थी। क्या? कुरान शरीफ पूरा एक साथ नहीं उतरा था, थोड़ा थोड़ा उतरता था, तो जितना उतरता था उस पर ईमान ले आए। अब दूसरा उतरा, उस दिन उसके ऊपर भी ईमान ले आए, उसके ऊपर ये अमल शुरू कर दिया। शराब पहले दिन से हराम नहीं थी, हराम धीरे धीरे हुई, तो जैसे जैसे हुक्म आता गया उसी के मुताबिक करते गए। यूँ तो धीरे धीरे, तो जैसे आयतें बढ़ती गई उसी तरह उनको खुशी भी हुई। चुनांचे 11वें पारे के अंदर इसी का तज़किरा है, वैदा उनज़िल सूरतुन फ़मिन हम मैं यकूल, कि जब कोई सूरत उतरती है तो मोमिन जो है उसको सुनकर खुश हो जाता है, ओहो अल्लाह ताला की आयत, नया हुक्म नाज़िल हुआ, नई आयत उतरी है। और मुनाफिक उसको देखकर जो है ओ ये नया हुक्म फिर कहाँ गया, कहाँ मुसीबत आ गई। तो वो उसके दिल के अंदर पहले से गंदगी थी, उस गंदगी के अंदर इजाफा होता है। और मोमिन के दिल के अंदर जो है पहले से ईमान था, तो उसके ईमान के अंदर इजाफा होता है। तो बहरहाल दूसरी सिफत यह है कि जब अल्लाह ताला की आयतों को जिक्र किया जाए तो ऐसी सूरत में जो है वो उसके ईमान के अंदर ज़्यादती हो जाए। एक बात वैसे ही जिक्र कर देता हूँ, आजकल आमतौर पर व्हाट्सएप पर जो है बहुत सारी बातें लोग गलत सलत बहुत लिख देते हैं। कोई हदीस लिख दी या कोई फजीलत लिख दी, तो उसकी कोई दलील नहीं होती है। तो उन चीज़ों को आदमी पढ़ने के बजाय, सही किताबें बहुत सारी है, उन सही किताबों को आदमी पढ़े, जैसे फजाइल आमाल है तो वो और बहुत सारी किताबें हैं, तो उन किताबों को देखे, इस तरह की बात को देख कर जो है दूसरे की तरफ आमतौर पर सुन के खुश हो जाता है, दूसरों पर भेज देता है। नहीं, दूसरों पर भेजना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। याद रहे हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई आदमी उस बात को जो मेरी नहीं है मेरी तरफ मंसूब करेगा, फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो थी नहीं, आपने किसी ने लिख दी, आपने सच्ची समझी और आपने फौरन दूसरे पर भेज दी। तो आपने ये काम किया तो कितना आप समझते मैंने अच्छा काम किया? नहीं, आपने अच्छा नहीं काम किया, आपने बहुत बुरा काम किया। हाँ, अगर पहले से मालूम है कि ये सही है तो ज़रूर आप रवाना करें, लेकिन बगैर ताकि के जो है इस तरह की बातें पढ़ पढ़ कर दूसरों पर रवाना करना बिल्कुल गलत है। बहुत सी मरतबा हम तो देखते हैं कि बिल्कुल गलत बेबुनियाद बातें होती है, तो इसलिए आदमी उसे एतराज़ करे। तीसरा क्या है? अल्लाह वाला रब्बी हम यतवक्कलून, वो ऐसे हैं जो अपने परवरदिगार पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। तवक्कुल के मुतालिक एक बात याद रहे, भरोसा करने का मफहूम यह है कि आदमी इस दुनिया के जितने असबाब हैं असबाब को इख्तियार करे, लेकिन ये ना समझे कि इसी से हो जाएगा, अल्लाह चाहेंगे तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। बस तो अगर इतना कम से कम है तो बराबर है, वरना आदमी ये समझे कि बस मैं तो अल्लाह पर भरोसा करके बैठ जाऊँगा, आपका माना भी नहीं है, अल्लाह मियाँ मुझे भेज देंगे। हाँ, अल्लाह में इस पर कादिर है कि वो तुम्हारे सामने खाना भी भेज दे और तुम्हारे मुँह तक भी पहुँच जाए, लेकिन फिर उसके लिए फिर वैसा मुजाहदा भी करना पड़ेगा, एक दिन में जो है बगैर नहीं होगा। दुनिया के लिए तो आदमी जो है सारी मेहनत करता है, दीन के मामले में मेहनत नहीं करता और उल्टा कहता है बस अल्लाह पर मुझे भरोसा, अल्लाह में बड़े रऊफ़ रहीम है। रऊफ़ रहीम भी है लेकिन वो जब्बार भी है, कहार भी तो है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इतनी बात याद रहे कि तवक्कुल का मफहूम यही है कि आदमी खुदा ताला की दात पर भरोसा करे लेकिन असबाब ज़रूर इख्तियार करे। हाँ, असबाब को असल ना समझे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि आप इलाज कराओ, मैं इलाज कराना सुन रहे थे, आप इलाज कराओ, लेकिन ये मत समझो कि इसी इलाज से मुझे अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, खुदा चाहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, खुदा नहीं चाहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरह आदमी रोज़ी हासिल करने के लिए मेहनत करता है, मशक्क़त करता है। एक आदमी तिजारत कोई दुकान खोलता है तो वे उसमें नुकसान घाटा नुकसान भी हो जाता है, तो भरोसा उस पर न करे, भरोसा खुदा की ज़ात पर करे। हाँ, अलबत्ता असबाब ज़रूर इख्तियार करे लेकिन असबाब पर भरोसा नहीं करना है, ये मतलब है तवक्कुल का। चुनांचे तवक्कुल का हुक्म बहुत जगह है कलाम पाक में, एक नहीं हर जगह हुक्म है। जैसे खुद ये गज़वे बदर का हाल देख लीजिए, आगे इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। सहाबा किराम के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, खाली 70 दो घोड़े थे और 70 ऊँटनी थी जिसके ऊपर बारी बारी सवार होकर जाया करते थे। हत्ता कि खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारी पर उतर जाते थे, पैदल चलते थे। आपके जो साथी थे हज़रत मिक़दाद हज़रत अली, अभी इस वक्त याद नहीं, उन्होंने आपसे ये भी दरख्वास्त की, नहीं हुजूर आप हमारे मौके पर आप बैठ जाइए, हम चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या फरमाया मालूम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हो और आखिरत के सवाब से मैं तुमसे कम मोहताज भी नहीं हूँ। देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखिए। तो बहरहाल वहाँ क्या था? असबाब कुछ भी नहीं थे लेकिन खुदा की ज़ात पर अल्लाह ने हुक्म दिया तो निकल गए, लेकिन जो था उसी को लेकर गए बस। तो जो कुछ था वो लेके जाना चाहिए, आगे अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जो चाहेंगे होगा। तो ये इसका नाम तवक्कुल है। और वैसे तवक्कुल बड़ी सिफत है और हर आदमी को अपने हैसियत के मुताबिक तवक्कुल करना चाहिए। बस इतनी बात याद रहे यूँ। बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं जो कुछ इसी चीज़ को इख्तियार नहीं करते, उनके काम वैसे ही हो जाते हैं, कमाते भी नहीं हैं, गैब से अल्लाह ताला उनको रोज़ी पहुँचाते हैं तो पहुँचाते हैं, लेकिन हर एक के लिए ये हुक्म नहीं है। الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون, چونکہ نماز بہت ہی اہم ہے۔ یہاں یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے, ایک وقت کی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, یا یہ آدمی پڑھی تو صحیح لیکن چال چلاؤ پڑھ لی۔ ایک بات میں ایسے ہی ذکر کر دیتا ہوں, بعض مرتبہ نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے, وہ خود اس کو ہر آدمی کو, ویسے بھی ہر آدمی کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی, دوسری کی غلطی جلدی نظر آ جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مثلاً رکوع میں سجدے میں سبحان میں سبحان سبحان اس طرح جلدی جلدی پڑھ کے جو ہے تین مرتبہ تسبیح بھی نہیں پڑھتے اور ذرا سا جھکتے پھر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اگر کوئی آدمی زندگی بھر بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ इसलिए बहुत एहतियात करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, रुकू में भी सजदे में भी सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम तीन मरतबा आहिस्ता से पढ़ेंगे, कौन सा वक्त चला जाएगा। बहुत से तो अल्लाह वाले तो 10-10, 20-20 मरतबा पढ़ते हैं, यानी एक 21 मरतबा 23 मरतबा इतना भी पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारी नफल नमाजों के अंदर दुआएं पढ़ते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन हम जैसे कमज़ोरों के लिए कम से कम तीन मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला, रुकू में भी सीधा खड़े होकर एक मरतबा रब्बना लकल हम्द, दो सजदों के दरमियान भी कम से कम अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी इतना पढ़ना ही चाहिए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह के नज़दीक जो है दो सजदों के दरमियान में ये दुआ पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है, और हमारे आम तौर पर लोग जो है कुछ भी नहीं पढ़ते, जल्दी से भी सज कर देते, बहुत से तो ज़रा सा सर उठाया फिर कर दिया, तो इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है। बल्कि कलाम पाक के अंदर जो है काफिर के मुतालिक ये जुमला आया है कि वो नमाज पढ़ता है, नमाज कायम नहीं करता। मुसलमान के लिए जहाँ भी आवे ना अकीमुस्सला व आतुस्सला युकीमुनस्सला वल मुकीमिस्सला, या तो माजी का सिगा होगा या मुजारे का सिगा होगा या इस्म फाइल का सिगा, लेकिन सिर्फ सलात के नहीं होगा। अलबत्ता काफिर के लिए है फला सद्दक वला सल्ला, फला सद्दक वला सल्ला, न उसने खुदा पर ईमान लाया न उसने नमाज पढ़ी, तो वहाँ सल्ला के लिए, यानी सही नमाज तो नहीं पढ़ी लेकिन तड़खाई भी नहीं उसने, कहते ना इसने नमाज तड़खा डाली घबरा डाली। हदीस पाक में भी है ना नमाज में चोरी करता है, तो साहब ने नमाज में कैसी चोरी, तो यही चोरी है यूँ। तो बहरहाल जो है मोमिन नमाज अदा करता है और पाबंदी के साथ पढ़ता है, एहतमाम से पढ़ता है, तो नमाज बहुत ही अहम है। मम्मा रज़क़ना हम युनफिकून, और हमने जो कुछ दिया उसमें से खर्च करते हैं, इसमें सभी आ गया, सदक़ात वाजिबात भी और नाफिला भी आ गए, ज़कात भी आ गई, सदक़े फितर भी आ गया, नफली तौर पर देना भी आ गया। आप अपने मेहमान की इज्जत करते हैं, इसलिए मेहमान को ये मेहमान नवाजी करते हैं, हदीस पाक में उसका हुक्म है। इसी तरह जो है दोस्त अहबाब को हदिया देते हैं, हदीस पाक में है आपस में हदिया दो उससे मोहब्बत पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल है। तो ये पाँच सिफत है, ये पांच सिफत जी इसके अंदर आ जाए, अल्लाह आगे फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही सच्चे पक्के मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए दरजात हैं, इनके लिए जिनके लिए पांच बातें पाई जाए, ख़ास तौर से मुजाहिदीन के लिए जो जिहाद में जाते हैं। मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि यहाँ तीन बातें हैं, तीन, एक तो दरजात है, दूसरा मगफ़रत है, अल्लाह ताला की तरफ से मगफ़रत हो जाएगी, माफ़ी हो जाएगी। मगफ़रत असल अरबी के अंदर गफ़र या गफ़रों के माने छुपा देना है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के अंदर छुपा देते हैं। हम में से कौन ऐसा है जो इस बात का दावा करे कि मैंने पूरी पूरी अल्लाह की इताअत की, कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। जाहिर बात है वो अपनी रहमत से हमें ढांप लेता है, छुपा लेता है। तो एक तो मगफ़रत है और एक दरजात है, और रिज़्क़े क़नीम से मुराद बेहतरीन इज़्ज़त की रोज़ी, जन्नत की सारी नेमतें हैं। तो कहते हैं अखीर की दो चीज़ें तो सब अहले जन्नत के लिए, सब मोमिनीन के लिए, लेकिन लहुम दरजात उन जो है वो सब के लिए नहीं है, वो ख़ास तौर से मुजाहिदीन के लिए है। जिहाद में जो जाते हैं तो जिहाद में जाना आसान नहीं है, यूँ इसलिए कि जिहाद के मैदान जिहाद से हो सकता है कि या तो खुदा के दरबार में चला जाए या हो सकता है कि वापस घर भी आवे, दोनों बातें हैं एक बात। दूसरी बात ये, हर आदमी एहतरा का नहीं होता है, जो है एक मुजाहिद ऐसा भी होता है जो बड़ा बहादुर होता है, और एक मुजाहिद ऐसा भी होता है जो कम दिल होता है, जैसे हम जैसे हैं कि तबलीग जमात में चिल्ले का नाम लिखाओ तो भी हम लिखवाते नहीं, तो भी डरते हैं जिहाद में जाने का हो तो मसला और मसला हो जाए। फिर दूसरी बात, हदीस पाक में खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत के 100 दरजात हैं, और हर मुजाहिद के लिए उसी के एतबार से दरजात होते जाएंगे। तो जाहिर बात है कि दर्जा हासिल करना आसान भी नहीं है। तो मुजाहिद, और फिर ये जिहाद में जो जाते हैं, एक शहसवार होता है, घोड़े पर सवार होता है, एक पैदल होता है, एक बहादुर होता है, एक गैर बहादुर होता है, और अब तो एक फिजाई भी, फिजा के अंदर जो है लड़ने वाले होते हैं, एक ज़मीनी लड़ने वाले होते हैं, हर एक की अलग अलग हैसियत होती है। तो इसलिए जो है मुजाहिद के लिए जो है बहुत से दर्जात हैं, चुनान के उन दर्जात को हासिल करना चाहिए। एक हदीस सुना देता हूँ, वो हमारे बहुत ही मतलब की है, बुखारी शरीफ की सही हदीस है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखता हो, पांच वक्त की बाजमात नमाज पढ़ता हो, रमज़ान शरीफ को रोज़े रखता हो, ज़कात का उसमें जिक्र इसलिए शायद नहीं होगा कि हर आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है, फिर उसके बाद जो है चाहे वो जिहाद के अंदर जाए या जिहाद के अंदर न गया हो, उसे जहाँ पैदा हुआ वहीं उसकी मौत आ जाए, लेकिन बहरहाल नमाज पाबंदी से पढ़ता था और ज़कात वो रोज़े बराबर रमज़ान के रखता था और सच्चा पक्का मोमिन था, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। तो हम लोगों की नीयत तो होनी चाहिए कि दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, नीयत तो कम से कम रखनी चाहिए। लेकिन अगर और मौका आए तो फिर तैयार भी होना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी नहीं है तो कि बहरहाल पांच वक्त की नमाज, रमज़ान शरीफ के रोज़े और ज़कात जिस पर है वो ज़कात भी अदा करे, इंशाअल्लाह जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, और ये पांच सिफतें जो ख़ास तौर से जिक्र की है अल्लाह ताला ने, वो सिफात अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा फरमाए और उसके ऊपर शुक्र अदा करने की तौफीक भी अदा फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.